अरमान की एंट्री। दूसरी ओर बाकी सभी लड़के डाकविला से दूरी बनाकर पर अलग अलग जगह सामने वाली बिल्डिंग में छुपकर नजरें गड़ाए हुए बैठे थे। वो सब डाकविला को टकटकी लगाए देख रहे थे। उस वक्त उनके मन में यही बात चल रही थी कि किस तरह से वहां एंट्री ली जा सकती है ताकि बाद में सभी पूरी तरीके से डाकविला पर हमला कर सके। उन्होंने काफी सोच विचार करने के बाद आखिरकार एक फैसला लिया था कि अगर आस्था डाकविला जाने के बाद एक घंटे के अंदर वापस नहीं आएगी तो वो सब मिलकर डाकविला पर हमला कर देंगे। इसीलिए वे पूरी तैयारी के साथ वहां आए थे। ब्लैक डेविल किंग कितना ज्यादा खतरनाक था इससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। सिंघानिया मेंशन में अब घर पर केवल अरमान के अलावा और कोई सदस्य मौजूद नहीं था। अभिमान जी भी शराब की नशे में गहरी नींद में सो चुके थे और दादाजी भी इस वक्त अपने गार्डन में टहल रहे थे, क्योंकि वे बच्चियों के प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाहते थे। वे चाहते थे कि बच्चियां दिल खोलकर मौज मस्ती करें। उन्हें ये बात भी अजीब लग रही थी कि अभिमान उनके पास अब तक क्यों नहीं आए, हालांकि उन्हें पता था कि अभिमान जी को संभलने में थोड़ा समय लगेगा। वहीं अरमान, जिसे काफी भूख लग रही थी, उसे नानी माँ ने पहले कहा भी था कि वो सबके साथ खाना खा ले या फिर ऑफिस चले जाए, वो यहां अकेले बैठे बोर हो जाएगा। लेकिन अरमान ने उस समय उनकी बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। अरमान को दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। नामकरण के बाद बाकी सभी लड़के तो ऑफिस के बहाने से वहां से डाकविला के निकल गए थे। अब अरमान के मन में यही बात चल रही थी कि उसे अभी तक खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। जैसे ही अरमान ने अपने लैपटॉप से सिर उठाया, वैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि पूरा का पूरा मेंशन खाली पड़ा हुआ था और वहां चुभने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। ये महसूस करते ही अरमान का चेहरा हल्का सा बदला और वो थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि खामोशी भरा माहौल अरमान को बेचैन कर गया था। तभी अचानक उसके कानों में रघुवंशी मेंशन से चुपती आवाजें सुनाई देने लगीं, क्योंकि वहां पूरे फुल वॉल्यूम में डीजे बज रहा था। असल में सभी लड़कियां चाहती थीं कि बिना किसी रोक टोक के तेज आवाज में डीजे बजाया जाए, क्योंकि अरमान को सिंघानिया मेंशन में शोर शराबा पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने गोद भराई की रस्म के लिए रघुवंशी मेंशन को चुना था ताकि वो सब बिना किसी रोक टोक के खुलकर एंजॉय कर सके। वहीं दूसरी ओर इतनी तेज म्यूजिक की आवाज सुनकर अरमान के चेहरे पर कुछ झिझक निशान दिखाई दे रहे थे, और आखिर में वो झिझक उसकी झुंझलाहट में तब्दील हो गई थी और वो तेज कदमों से सिंघानिया मेंशन से बाहर निकलकर सीधे रघुवंशी मेंशन आ पहुंचा। जैसे ही अरमान ने वहां आस्था को इस तरह से टल्ली होकर नाचते हुए देखा तो वो एकदम से चौंक गया और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी होती चली गईं। फिर वो नाखुश होकर सोचने लगा कि ये लड़की आखिर कर क्या रही है। वहीं अरमान के आने पर अचानक से सभी लोग खामोश हो गए थे। अरमान का वजूद इतना रोबदार था कि कोई भी उसे देखकर घबरा जाए, पर आस्था को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो लगातार वहां डांस कर रही थी, क्योंकि उसने अभिमान जी की पूरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खाली कर दी थी। अभिमान जी की बातें सुनने के बाद उसका गला और दिल पूरी तरह से भर आया था, और कब उसने शराब मिली हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल दोबारा खाली कर दी उसे खुद भी पता नहीं चला। इस समय उसके ऊपर नशा पूरी तरह से हावी हो चुका था। अब जब आस्था की नजर अरमान पर पड़ी तो वो झूमते हुए उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई थी। अब जाकर सभी सदस्यों को इस बात का एहसास हुआ कि आस्था जब से डांस कर रही थी तब से वो पूरी तरह से नशे में थी। सभी लेडीज आस्था को इस हालत में देखकर थोड़ी देर के लिए सन रह गई थी। आस्था को इतने नशे में देखकर अरमान का चेहरा अगले ही पल और भी ज्यादा कठोर हो गया था। उसकी आंखों में नाराजगी तैरने लगी थी। अरमान अब मन में बड़बड़ाया, क्या इस एंग्री बर्ड को नशा करने की आदत है? कल रात भी ये लड़की नशे की हालत में कितनी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, और अब भी ये नशे में टल्ली होकर अजीब तरीके से नाच रही है। अब मैं इस एंग्री बर्ड का क्या करूं? इससे पहले कि अरमान उस पर अपनी भड़ास निकाल पाता, उससे पहले आस्था ने आगे बढ़कर अपना सिर अरमान के कंधे पर रख लिया था। तब नानी माँ कुछ सेकंड हिचकिचाए, फिर अरमान को देखते हुए बोली, दामाद जी, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, जब से इसने अभिमान के साथ थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी थी तब से इसकी ऐसी हालत हो गई है। क्योंकि नानी माँ ने आस्था को अभिमान जी के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देख लिया था जब आस्था उनसे बातें कर रही थी। फिर नानी माँ ने तुरंत वंशिका और राधिका को कुछ इशारा किया तो वे दोनों आकर रश्मि के पास खड़ी हो गईं, क्योंकि रश्मि आस्था के लिए काफी परेशान हो रही थी। नानी माँ की बातों पर रिएक्ट करते हुए अरमान ने कोल्ड ड्रिंक की जांच पड़ताल की, तब उसे समझ आया कि उस कोल्ड ड्रिंक में पहले से ही शराब मिली हुई थी। वो समझ गया कि शायद उसके पिता ने उस कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में शराब मिलाई थी। ये ख्याल आते ही अगले ही पल अरमान ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। अरमान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने गुस्से को दबा रहा हो। नानी माँ ने अरमान की नाराजगी भांप ली थी, इसीलिए वो घबराई आवाज में चिंतित होकर बोली, लगता है इसने गलती से अभिमान वाली ड्रिंक पी ली है। आप प्लीज इसे इसके कमरे तक छोड़ आइए, क्योंकि ये अब होश में नहीं है।
अगर इसे कोई मामूली सी कोल्ड ड्रिंक भी पिला देना तो इससे बर्दाश्त नहीं होता, और अभी तो इसने गलती से शराब पी ली है, पता नहीं क्या हल्ला काटेगी। इतना कहते ही नानी माँ बेचैन होने लगती हैं। इस पर अरमान ने नानी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। सबको एक नजर घूरने के बाद वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ आस्था को गोद में उठाकर सीधे सिंघानिया मेंशन के कमरे में ले आया। वहीं आस्था अरमान की गोद में आने के बाद एक बार फिर से कुछ न कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। वो उसे कितनी ही सारी बातें बोले जा रही थी, लेकिन अरमान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो बड़े ही ध्यान से आस्था की सारी बातें सुन रहा था। जैसे जैसे वो आस्था के शब्द सुन रहा था, वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिलहाल वहीं दूसरी ओर सभी लड़के उस डाक विला के सामने बैठे हुए थे। वे सभी आस्था का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ही आस्था वहां आएंगी, वैसे ही वो सब अपना काम शुरू कर देंगे। इस वक्त राजवीर जिंदल हर रोज की तरह अपनी बीवी के कब्र पर जाने के लिए निकल चुका था, और जब आस्था को लगातार कॉल और मैसेज करने के बाद भी आस्था वहां नहीं आई और उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो सब लोग पूरी तरह से घबराने लगे। उनके चेहरे पर उलझन भरे एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग में एक साथ कई सारे ख्याल आ रहे थे। सब बेचैन होकर सोचने लगे कि कहीं आस्था के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। इसीलिए ज्यादा कुछ न सोचते हुए उन्होंने सबसे पहले घर जाकर आस्था से मिलने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि आस्था ठीक है या नहीं। यही तय करते हुए सब लोग थक हार कर शाम के वक्त घर आ गए थे। जैसे ही वो सब घर आए, वैसे ही उन्हें पता चला कि आस्था ने गलती से ड्रिंक कर ली है। तो ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। अचानक सब एक दूसरे की शक्ल हैरानी से देखने लगे। उस वक्त कोई कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं था, इसीलिए उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। उस समय अविनाश ने सबको आंखें दिखाकर शांत रहने का इशारा किया और तभी हुई आवाज में सबसे कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है कि इसमें भी हमारी कोई भलाई छुपी हुई हो। अब हमें ये प्लान कल पर डाल देना चाहिए।
वही अरमान, जो आस्था की सारी उल्टी सीधी बातें सुनने के बाद एकदम डार्क एक्सप्रेशन के साथ वहां बैठा हुआ था, वो पूरी रात जागता रहा। उसने एक भी पल आंख बंद नहीं की थी। उसके दिल और दिमाग में हैरानी के बादल छाए हुए थे, लेकिन उसने उन बादलों को चेहरे पर मंडराने नहीं दिया। वहीं अगली सुबह आस्था की आंखें करीब 11 बजे खुली थीं। उसने देखा कि वो कमरे में अकेली है। इस वक्त उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी नानी माँ नींबू पानी लेकर उसके कमरे आ गईं। उन्होंने उसे नींबू पानी पिलाया और हल्की नाराजगी से बोली, जब तुझसे शराब बर्दाश्त नहीं होती तो तूने शराब क्यों पी थी? नानी माँ के इस तरह डांटने पर आस्था अपने होशो हवास में आई और कुछ याद करके उसकी शक्ल रोनी सी हो गई और वो एकदम से परेशान होकर खुद को कोसने लगी। कल हमारी जिंदगी का कितना इम्पोर्टेंट दिन था, लेकिन हमारी एक बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। ये बोलते हुए आस्था लगभग रोने को हो गई थी, लेकिन नानी माँ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, तुम्हें अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तेरा भैया तुझसे मिलना चाहता है। अविनाश पिटवा ने कहा है, जब तू नींद से जागी तब तू उससे मिलने के लिए सीधे स्टडी रूम में चली आना। अब जैसे ही आस्था ने नानी के मुंह से इस तरह की बातें सुनी, तो वैसे ही वो फटाफट से फ्रेश होकर स्टडी रूम में पहुंच गई थी। उसे पता था कि अब तक अरमान ऑफिस के लिए निकल चुका होगा। वहीं स्टडी रूम में पहुंचने के बाद उसने देखा कि सब लोग वहीं मौजूद थे। आस्था को लगा कि सभी उससे नाराज होंगे, क्योंकि वे सब लोग कल पूरी तैयारी के साथ डाक विला गए थे और उसकी वजह से उनका सारा प्लान चौपट हो गया था। आस्था की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है और उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। आस्था की सिचुएशन समझते हुए अबीर ने बात को हंसी में टालते हुए कहा, वैसे बटरफ्लाई, आपने बिल्कुल ठीक किया कि आप वहां नहीं आई। मैं खुद भी नहीं चाहता था कि आप उस ब्लैक डेविल किंग के सामने जाएं। पता नहीं वो ब्लैक डेविल किंग आपके साथ कैसा बर्ताव करता, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस पर आस्था ने खुद को दोष देते हुए कहा, ये सब हमारी ही गलती है। हमें इस तरह से अपने होशो हवास नहीं खोना चाहिए था। हमारी एक गलती की वजह से आप सबका सारा प्लान खराब हो गया और वो एंटीडोट हासिल करने के लिए एक और दिन हमारे हाथों से निकल गया। ये सब कहते हुए आस्था की आवाज़ थोड़ी सी कांप रही थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर के भाव आ जाते हैं, मगर वो जल्दी ही उन्हें छुपा लेती है। तभी अविनाश ने अपनी बहन की मायूसी भांप ली, फिर उसने कोमलता से आस्था का सर सहलाया और धीमी आवाज़ में उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने प्लान को आज भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम एक बार सोच लो, क्या वाकई में तुम ये खतरनाक काम करना चाहती हो? इस पर आस्था ने पलकें झपकाई और पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, मैं अपनी जान देकर भी अपने पति की यादें वापस लाकर रहूंगी। आस्था के चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे उसके अंदर किसी तरह की घबराहट या नर्वसनेस छुपी हुई हो। वो बिल्कुल निडर और बेखौफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी ओर संजना गुस्से से अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी, क्योंकि कल से लेकर अब तक वो वसुंधरा के जरिए आस्था को लगातार कितने ही सारे कॉल्स करवा चुकी थी, लेकिन आस्था के नशे में होने की वजह से वो किसी का भी कॉल अटेंड नहीं कर पाई थी, जिस वजह संजना का पूरा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। इस वक्त उसके दिल में जहर ही जहर भरा हुआ था। वो किसी नागिन की तरह फुफकार रही थी।
और अपनी आंखें बंद करके वो गुस्से से आस्था को कोसने लगी थी। कोई इंसान इतना ज्यादा लकी कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वसुंधरा की इमोशनल लाइन सुनकर आस्था खुद को वसुंधरा से मिलने से रोक नहीं पाएगी और उससे मिलने जरूर आएगी। लेकिन आस्था ने तो वसुंधरा का फोन तक नहीं उठाया था। इसी बात पर संजना बहुत ज्यादा हाइपर हो रही थी। गुस्से में सोचते सोचते अचानक संजना ने एक नई चाल चलने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो किसी और तरीके से आस्था के नाम एक लेटर भिजवाएंगी। वहीं दूसरी ओर आस्था पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, क्योंकि वो सुबह 11 बजे उठी थी, इसलिए देर ना करते हुए वो तैयार होकर सीधा नाइट क्लब जाने के लिए निकल पड़ी थी। आस्था जानती थी कि अगर रॉकी के बॉस को आस्था चाहिए तो रॉकी उसे जरूर नाइट क्लब के आसपास ही ढूंढ रहा होगा। वहीं दूसरी ओर रॉकी पिछले 48 घंटों से चैन से एक पल भी नहीं बैठा था। उसके बॉस ने उसे बहुत बेरहमी से धमका दिया था, जिस वजह से वो काफी डरा हुआ था। अब अगर आज भी उसे आस्था नहीं मिली तो उसका बॉस उसके साथ क्या सलूक करेगा, ये सोचकर ही उसके माथे पर पसीने छूट रहे थे। आज आस्था को ढूंढने की उसकी आखिरी डेडलाइन थी। इसी वजह से उसने क्लब के आसपास पागलों की तरह अपने आदमियों को लगा रखा था, ताकि कहीं से भी उसे आस्था की एक झलक मिल जाए, क्योंकि अगर आज आस्था नहीं मिली तो सम्राट के हाथों से उसकी मौत पक्की थी। वो बार बार परेशान होकर यही सोच रहा था कि आखिरकार वो लड़की इस तरह गायब कैसे हो सकती है। सिटी की सारी फुटेज भी उसी दिन की कैसे गायब हो गई। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन फिलहाल अपनी जान बचाने के लिए उसे आस्था की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसी वजह से वो चारों तरफ आस्था को यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढ रहा था। वहीं आस्था अब जानबूझकर एक नॉर्मल बेचारी लड़की बनने का नाटक करते हुए रॉकी के पास जाने वाली थी। वो अपनी स्कूटी से वहां पहुंच गई और जानबूझकर उसने रॉकी की कार को हल्की सी टक्कर मार दी। रॉकी जो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था और आस्था को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, जैसे ही उसकी कार को टक्कर लगी तो वैसे ही वो गुस्से से बौखलाकर कार से बाहर आ गया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी भड़ास निकाल पाता, उससे पहले उसकी नजर आस्था पर पड़ी, जिसे देखकर वो पूरी तरह से फ्रीज हो गया।